समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और 100.1 MHz पर यह समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार हम आपको बताएंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास राज्यों की परिक्रमा के लिए और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल।
वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल्सो मुदिता एंड टू ऑल आर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। वेरी गुड आफ्टरनून, दिस इज शगुन चोपड़ा विद मुदिता एंड हियर वी आर विद द सिलेक्शन ऑफ न्यूज, ऑल्सो आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। वी हैव मेनी रिपोर्ट्स, capsules, businesses, and we'll be paying our tributes, and there is a lot more over the next half an hour, but we'll begin with the headlines first, right?
Ji, bilkul Shagun.
Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Global Investor Summit 2025 in Bhopal, says the entire world is looking at India with hope and optimism.
प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी की।
Newly constituted Delhi Assembly session begins. Vijendra Gupta elected as Speaker of Assembly.
और ICC Champions Trophy में आज पाकिस्तान के रावलपिंडी में ग्रुप ए मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला बांग्लादेश से जारी।
And now let's begin with our segment Dateline India, and we will be taking a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about the anniversary of PM Kisan Samman Nidhi Yojana. Well, farmers are the real magicians who turn dust into sustenance, and no nation can prosper without respecting its farmers. And on this day in 2019, Prime Minister Narendra Modi launched the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme, and with an aim to ensure a life of dignity as well as prosperity for our hard-working farmers.
जी शगुन और श्रोताओं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है और इसका उद्देश्य देश भर में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। शगुन, एक खास बात पे गौर करिएगा कि इस योजना का नाम किसान सम्मान निधि योजना है, सहायता की जगह सम्मान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इस योजना के तहत पात्र किसानों को 6,000 रूपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये सहायता 3 समान किश्तों में की जाती है। हर किश्त में 2,000 रूपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
एंड मुदिता, नाउ टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑल द फार्मर्स अक्रॉस द नेशन ऑन द 6th एनिवर्सरी ऑफ द पीएम किसान सम्मान निधि योजना, विच इज अ लैंडमार्क इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू सपोर्ट एंड अपलिफ्ट द फार्मर्स ऑफ इंडिया।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने संतोष व्यक्त किया कि योजना के तहत अब तक लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रयास देश के किसानों को सम्मान, समृद्धि और नई ताकत दे रहा है।
Also, Mudita, I would also like to add that Prime Minister said that in the last 10 years, due to the efforts of his government, the agriculture sector in the country has developed rapidly. He said, due to the financial help being provided to millions of the small farmers, market has been accessible to them now. Mr. Modi also said, along with this, that the cost of agriculture has reduced and their income has also increased.
जी शगुन, और इस योजना के जो उद्देश्य हैं वो हम बता देते हैं श्रोताओं को। तो ये योजनाएं छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए, तो चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। साथ ही वित्तीय समावेशन को संबोधित करने के लिए पीएम किसान योजना SMF की वित्तीय आवश्यकताओं को संबोधित करने, अच्छी फसल और पैदावार के लिए आवश्यक खरीद की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार है।
Also, Mudita, I would like to add another primary objective of PM Kisan. It is to safeguard SMFs from resorting to moneylenders to meet agriculture expenses, thereby ensuring their sustained engagement in the farming activities.
जी बिल्कुल शगुन. और ये योजना जो है ये व्यक्तियों को यानी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रदान करती है. प्रत्येक पीएम किसान लाभार्थी आवंटित राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने का हकदार है. ये राशि 3 किश्तों में दी जाती है जैसा हमने पहले भी बताया, और प्रत्येक किश्त की राशि 2000 रुपये है. ये सीधा हस्तांतरण जो है ये विसंगतियों और बिचौलियों को खत्म करता है.
Right, and Mudita, farmers are really important. Well, we celebrate this particular day also, the anniversary, which is, we mark this anniversary because farmers are the backbone of India, right?
Bilkul.
And now focusing on the prime aim of PM Kisan, this is to ensure that farmers receive a minimum income. Eligible farming families get rupees 6,000 in 3 equal parts every 4 months.
और शगुन, ये पीएम किसान के लाभार्थियों को ये योजना से जो धन प्राप्त होता है इसका उपयोग करने की उन्हें पूरी स्वतंत्रता है. वो इसका उपयोग विभिन्न जरूरतों के लिए कर सकते हैं, यानी खर्च संबंधी निर्णयों में उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी गई है.
And all the funds for the PM Kisan program, they come from the central government. To qualify for the program, a farmer family should include a husband, wife and minor child or children as determined by the government.
और श्रोताओं, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार डेटा प्रदान करना अनिवार्य है. जिन लाभार्थियों के पास आधार डेटा नहीं है वे निकटतम CSC केंद्र से अपना नामांकन करा सकते हैं. लाभार्थी जो है वो पीएम किसान मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं और खुद को सामान्य सेवा केंद्रों में भी पंजीकृत कर सकते हैं. ये योजना लाभार्थियों के लिए एक सुविधाजनक स्व पंजीकरण तंत्र भी पेश करती है.
एंड मुदिता, नॉट ओनली दिस, अ डेडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर हैज बीन सेट अप टू असिस्ट द बेनिफिशियरीज, एंड दिस इन टर्न हेल्प्स टू एड्रेस देयर इश्यूज व्हिच दे कैन एनकाउंटर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन और एनी अदर ग्रीवेंसेस that they may have or they may arise, and ensuring scheme authenticity, a mandatory annual physical verification is conducted for 5% of beneficiaries, 5% contributing to the robustness of this particular verification process.
जी, और शगुन, हमने पहले भी DBT के बारे में बात की, तो ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण बिचौलियों को खत्म करता है.
जी,
सीधे धन के हस्तांतरण की व्यवस्था करता है. इसके अलावा भूमि जोत की परवाह किए बिना ये योजना पूरे देश में हर किसान परिवार तक पहुंचने की कोशिश करते हुए व्यापक कवरेज सुनिश्चित करती है.
ऑल्सो मुदिता, आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड कपल ऑफ पॉइंट्स. दिस ऑल्सो लीड्स टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. एम्ब्रेसिंग डिजिटाइजेशन, ऑल फार्मर रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर सिस्टमैटिकली मेंटेन्ड ऑन एन ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म. दिस इनिशिएटिव सिंप्लीफाइज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विच कैन बी टीडियस एंड फैसिलिटेट्स सीमलेस फंड ट्रांसफर्स. Now the second point, enhancing farmer liquidity. This is the key outcome of this scheme, and it is the alleviation of liquidity constraints faced by the farmers. It empowers them to manage (1) agricultural expenses, (2) allied activities, (3) domestic needs with greater financial flexibility.
जी शगुन, और हमने बात पहले भी करी कि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य है इस योजना का. इसके अलावा बीज से लेकर बाजार तक कई नई प्रणालियां शुरू करके कृषि में सुधार की ओर भी कदम बढ़ाया गया है, और कृषि क्षेत्र में पुरानी प्रणालियों में भी कई सुधार लाए गए हैं.
एंड मुदिता, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन. वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, एंड विद दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन देयर इज अ नीड फॉर फूड. So, encouraging small farmers could be the way forward, making farming a viable career while connecting it to the wider market. And efforts should be made for attracting younger generations to this particular profession as well.
बिल्कुल शगुन, और जैसा हम सब जानते हैं ये बात तो कि जमीन के साथ जो है हमारा रिश्ता जो है वो केवल भोजन पैदा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जो हमारी प्रकृति है इसके साथ हमारा संबंध बना रहे, पौधों और जानवरों के जीवन की विविधता भी संरक्षित हम कर सके, और साथ ही साथ हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस ग्रह को, अपने पृथ्वी को, उनको अच्छी तरह से अच्छे हालात में उनके हाथों में हम सौंप के जाएं, तो खेती का भविष्य केवल खेती से संबंधित नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये दुनिया की बेहतरी के बारे में है.
जी, ऑल्सो लीड्स टू होलिस्टिक डेवलपमेंट. By supporting small farmers and giving them the tools to succeed in a changing world, we can work towards a more sustainable planet. And now let's talk about another post. The Prime Minister also said that the nation is proud of its farmers. He shared a thread on this initiatives taken for farmers' welfare. He said that government is committed to improve their lives.
और अब समय है राज्यों की परिक्रमा का, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास। तो शगुन, सबसे पहले हम चलते हैं पहाड़ी राज्य हिमाचल की ओर। हिमाचल सरकार राज्य के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने और उनकी आर्थिकी को सशक्त करने के प्रयास कर रही है। इन समूहों द्वारा तैयार उत्पादों और ग्रामीण कारीगरों के शिल्प कौशल को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म himera.co.in को लॉन्च किया गया। इस पहल से जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहीं स्वरोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के 44,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3.5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को प्रोत्साहन देने के हर संभव प्रयास कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और इन महिलाओं को सशक्त और आर्थिक सबल देने के सरकार के प्रयासों के आशाजनक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने इस वर्ष 3 जनवरी को एक नई पहल करते हुए आधिकारिक तौर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म himera.co.in का लॉन्च किया, जिसके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को वैश्विक मंच उपलब्ध करवाने के साथ साथ ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को विस्तार और ऑनलाइन बिक्री के लिए विश्वसनीय त्वरित व सुलभ माध्यम उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस वेबसाइट पर हाथ से बुने हिमाचली वस्त्रों से लेकर शुद्ध और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों सहित लगभग 30 उत्पादों की विविधतापूर्ण रेंज उपलब्ध है। सरकार की ये पहल ग्रामीण हिमाचल के शिल्प कौशल की समृद्धि और विविधता को भारत के हर कोने में पहुंचा रही है, जिसके चलते स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के अलावा ग्रामीण कारीगर व उद्यमी बेहद उत्साहित हैं। ऑनलाइन बिक्री के साथ साथ सरकार हिमइरा के उत्पादों को ऑफलाइन माध्यम से प्रदर्शित व बिक्री करने के लिए सरकारी भवनों में इन उत्पादों के लिए एक समर्पित दुकान भी उपलब्ध करवा रही है, जिनके माध्यम से स्थानीय लोग व पर्यटक इनकी रुचि पूर्वक खरीदारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार के ये नवोन्मेषी प्रयास राज्य भर के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं, ग्रामीण कारीगरों व उद्यमियों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में सफल हो रहे हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स बेंगलुरु। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च इन हेसरघट्टा नियर बेंगलुरु इज गेयरिंग अप फॉर द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर टू शोकेस इट्स टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड द फार्मर्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद देयर साइंटिस्ट्स। द मेगा फेयर विल बी हेल्ड फ्रॉम फेब्रुवरी 27th टू मार्च 1st। वी हैव रिपोर्ट ऑन दिस।
The National Horticulture Fair, an annual affair, attracts thousands of enthusiasts and youths, is here once again starting this coming Thursday. The theme of this year is nutrition, empowerment and livelihood. Hence, the fair will highlight ways to improve nutrition through the promotion of nutritionally rich crops and varieties. It will suggest solutions to empower the farmers, especially those from socio-economically disadvantaged backgrounds. The third focus area is the ways to improve the livelihood of farmers through innovation in productivity, income and sustainable practices in horticulture. There will be 250 stalls showcasing latest innovations in horticultural technologies. These are designed to improve crop production, protection, post-harvest management, value addition, machinery and tools developed by the research institute. The visitors will see cutting-edge technologies and solutions that are socially and economically viable. There will be live demonstrations, hands-on workshops on mushroom production, protected cultivation, vertical farming and terrace gardening. There will be expert guidance on field-based challenges in different horticultural crops. The fair will network the researchers, farmers and industry professionals. The ultimate aim of the fair is to involve the stakeholders in the process of creating a Viksit Bharat. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
और अब चलते हैं गुजरात की ओर, जहां पे कच्छ अपने रेगिस्तान, पहाड़, समुद्र और जंगलों के कारण पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र तो पहले से ही बना हुआ है, वहीं भुज स्थित स्मृतिवन आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र यहीं स्थित है और हाल ही में भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष वेधशाला का उद्घाटन यहीं किया गया है। ये वेधशाला आकाशीय क्षेत्र और खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों को आकर्षित करती है, साथ ही ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद करती है। आइए सुनते हैं परेश की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस पर भुज के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में देश की सबसे बड़ी अंतरिक्ष वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह कच्छ और गुजरात के लिए गौरव की बात है कि देश की सबसे बड़ी वेधशाला यहां स्थापित की गई है। यह वेधशाला खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों को 1 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित 24 इंच की डोलकिर्कहम दूरबीन के माध्यम से अद्भुत खगोलीय घटनाओं को देखने का अवसर प्रदान करती है। वेधशाला आगंतुकों को निहारिकाओं, ग्रहों और दूरस्थ तारों जैसी शानदार खगोलीय घटनाओं को देखने का अवसर प्रदान करती है। आगंतुक शाम 6 से 9 बजे तक अंतरिक्ष वेधशाला का भ्रमण कर सकते हैं। भुजिया पहाड़ पर इस वेधशाला की स्थापना का विशेष कारण यह है कि यहां प्रकाश प्रदूषण कम होने के कारण यह खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही और शोधकर्ताओं को तारों के अवलोकन के लिए आकर्षित करता है। 2 महीने के भीतर हजारों लोगों ने इस वेधशाला का दौरा कर चुके हैं। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भुज के परियोजना निर्देशक डॉक्टर सुमित व्यास ने अंतरिक्ष वेधशाला के बारे में जानकारी देते हुए यह बात कही।
ये पब्लिक स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है भारत में सर्वप्रथम ऐसी पब्लिक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ज्यादातर ये जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी होती है जनरली रिसर्च यानी कि संशोधन के तौर पे कुछ संस्थाओं द्वारा ही ऑपरेट की जाती है। यह पहल भारत की सबसे पहली पहल है जिसके अंदर यही टेलीस्कोप जो संशोधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है उसका एक्सेस सामान्य जनता, बच्चों और विद्यार्थियों को दिया गया है। इसमें जो टेलीस्कोप रखाया गया है वो है CDK 24 इंच रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, यानी कि इस टेलीस्कोप से डीप फील्ड यानी कि ब्रह्मांड में बहुत दूर तक हम देख सकते हैं। ये टेलीस्कोप की मदद से खगोल की यानी कि एस्ट्रोनॉमी की बहुत सारी चीजें, प्लैनेट्स, नेब्यूलास, गैलेक्सी, इन सब को देखा जा सकता है और ये एक्सेस हर एक जनता के लिए उपयुक्त है।
मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा के अनूठे दृष्टिकोण के साथ क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भुज विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, खगोलीय घटनाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जिज्ञासा जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परेश मारू, आकाशवाणी समाचार, भुज।
नाउ लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू बिजनेस न्यूज टुडे। The benchmark domestic equity indices slumped to over 1% today, mirroring losses in their Asian peers amid weak global cues. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, tanked 857 points to close at 74,454. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 shed 242 points to settle at 22,553. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.3% up at $74.7 per barrel, and WTI crude added almost 0.3% to trade at $70.6 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 86,390 rupees for 10 grams, while silver 999 fine was trading down at 96,310 rupees per kilogram when reports last came in.
और खेल के मैदान की हलचल में शगुन, जैसा कि सब जानते ही हैं कि कल की भारत की जीत की पहली खबर है हमारे पास, उससे जुड़े हुए सेलिब्रेशंस की खबर है।
Yes. जी शगुन, एंड द सेलिब्रेशंस दे कंटिन्यू अक्रॉस द कंट्री एंड एज वेल एज अब्रॉड ओवर इंडियाज विक्ट्री अगेंस्ट आवर राइवल पाकिस्तान इन द ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी व्हिच वाज लास्ट नाइट। लीडर्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, फिल्म पर्सनालिटीज एंड लेजेंड्स फ्रॉम अदर वॉक्स congratulated Team India, and why not? India defeated arch rival Pakistan by 6 wickets in a high-stakes Group A clash at the Dubai International Stadium last night. Now focusing on Mudita, today's match in the ICC Men's Champions Trophy, New Zealand won the toss and opted to bowl against Bangladesh in their Group A match underway in Rawalpindi, Pakistan. A win for New Zealand will secure their spot in the semi-finals alongside India, surpassing defending champions Pakistan and Bangladesh. India currently leads Group A with 2 wins from 2 matches, while New Zealand is in second place. And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On the 24th of February 1919, Mahatma Gandhi initiated the campaign against Rowlatt Acts and set up Satyagraha Sabha at Bombay. The movement was against the exclusion of freedom of press and detention without trial. During this agitation, Gandhiji famously said,
"It is my firm belief that we shall obtain salvation only through suffering and not by reforms dropping on us from the English. They use brute, we soul force."
The Rowlatt Acts allowed political cases to be tried without juries and permitted internment of suspects without trial, suspending the right of habeas corpus. Freedom fighters rose up against this brutal act, and the country witnessed a remarkable political awakening during the months of March and April of 1919.
There were hartals, strikes, processions and demonstrations. In Amritsar, the local leaders Kichlu and Satyapal were deported on the 9th of April. The arrest of the local leaders led to attacks on the symbols of British authority. On the 11th of April, martial law was clamped with General Dyer's in command.
After the incident of Jallianwala Bagh massacre on the 13th of April 1919, the country rose up together in non-cooperation movement. In March 1922, accepting the report of the Repressive Laws Committee, the British colonial government repealed the Rowlatt Act, the Press Act, and 22 other laws.
We remember freedom fighter Nenu Ram, who was born on the 24th of February 1892 in district Mandsaur, Madhya Pradesh. Nenu became the president of Harauti Rajasthan Seva Sangh Kota during 1920 and 1926 and mobilized the peasants of Barad and Bundi's Dabi for the abolition of forced labor and redressal of agrarian grievances. He was arrested in 1922.
From 1926 to 1936, Nenu Ram served as the president of Harauti Rajya Praja Mandal in Kota. He also worked as an executive member of the Kota Rajya Praja Mandal from 1934 to 1936 and was elected president of its fourth session at Mangrol in May 1939. A liberal and secular leader, Nenu Ram advocated for responsible government in the Kota state. He was murdered under mysterious circumstances while travelling from Ramganj Mandi to his village Nimana on 14th of October 1941. To remember freedom fighter Bondoka Bhotra, who died on the 24th of February 1943. Bhotra participated in the Quit India movement in 1942 in Odisha in response to the nationwide call of Mahatma Gandhi. He was arrested and detained in Nabrangpur jail, where he fell ill due to the unhygienic living conditions and lack of medical care. On the 15th of February 1943, he was admitted to the hospital and later shifted to Koraput district jail. Bondoka Bhotra died due to heart failure on the 24th of February 1943 while in prison.
Or पुण्यतिथि और जन्मदिवस के क्रम में आज हम सबसे पहले याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों की मशहूर और कहना चाहिए कि सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में जिनका नाम हमेशा लिया जाएगा शगुन श्रीदेवी की आज पुण्यतिथि है 80 और 90 के दशक में जो मुकाम श्रीदेवी ने हासिल किया था वो उनसे पहले कोई भी अभिनेत्री हासिल नहीं कर पाई थी और इसीलिए उन्हें हिंदी फिल्मों की पहली महिला सुपरस्टार कहा जाता है अपने तीन दशक लंबे करियर में श्रीदेवी ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया जिनमें हिंदी के अलावा तेलुगु तमिल कन्नड़ और मलयालम फिल्में भी शामिल हैं 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में श्री अम्मा यंगर अयप्पन का जन्म हुआ था जिन्हें हम श्रीदेवी के नाम से जानते हैं महज 4 साल की उम्र में उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर अभिनय की दुनिया में कदम रखा बतौर अभिनेत्री उनकी करियर की पहली फिल्म थी तमिल फिल्म मुंदरु मुदची और हिंदी फिल्मों में बतौर हीरोइन उनकी पहली फिल्म थी 1979 में आई फिल्म सोलवा सावन लेकिन पहचान उन्हें मिली 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से
Well, Sridevi, hailed as one of most legendary actresses, delivered iconic performances in films such as Mr. India, Nagina, Sadma, Chalbaz, Chandni, Khudagawa, leaving an enduring legacy across various Indian languages, as you rightly told.
Ji, Shagun aur unki aakhri film Mom ke liye unhe marnoparant Sarvashreshth Abhinetri ke Rashtriya Puraskar se nawaza gaya aur isse pehle unhe 3 baar Filmfare Puraskar mila aur 2013 mein unhe Bharat Sarkar ki or se Padma Shri se nawaza gaya aur aaj hi punyatithi hai suprasiddh. Pehle hum aage badhne se pehle Sridevi ka ek dialogue sun lete hain.
Sometimes married couple don't even know how the other is feeling. So how they will help the other? It means marriage is finished? No. That is the time you have to help yourself. Nobody can help you better than you. If you do that, you will return back feeling equal. Your friendship will return back. Your life will be beautiful.
और आज सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर रुक्मिणी देवी अरुंडेल की पुण्यतिथि है, जिनका जन्म 29 फरवरी 1904 को तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था. और शगुन ऐसे समय में जब लड़कियों का डांस करना अच्छा नहीं माना जाता था, तब उन्होंने न केवल भरतनाट्यम सीखा बल्कि तमाम विरोधों के बावजूद इसे मंच पर प्रस्तुत भी किया. आजादी के बाद वो राज्यसभा की पहली मनोनीत महिला सदस्य बनी और 1956 में कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. इससे पहले 1957 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया था.
वेल टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग विलहेम कार्ल ग्रिम. ही वॉज अ जर्मन ऑथर एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. वी नो हिम फॉर सिंड्रेला, द फ्रॉग प्रिंस, रापुंजेल, लिटिल रेड राइडिंग हुड, स्लीपिंग ब्यूटी एंड स्नो व्हाइट. वेल, ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ जेकब ग्रिम ऑफ द लिटररी डुओ The Brothers Grimm, and we have for you this beautiful song from this particular movie, Cinderella. Let's listen to a glimpse of that.
In dreams you will lose your heartache. Whatever you wish for.
और श्रोताओं, शहंशाह गजल के नाम से जाने जाने वाले मशहूर गायक तलत महमूद की आज जयंती है. 1924 में आज ही के दिन लखनऊ में उनका जन्म हुआ था और वहीं पर उन्होंने भातखंडे संगीत विद्यालय में संगीत की आरंभिक शिक्षा ली. शगुन तब उसका नाम मॉरिस संगीत विद्यालय हुआ करता था
जी.
और एक दिलचस्प बात श्रोताओं ये है कि गायक के तौर पर उनकी पहचान बनाने में आकाशवाणी का बड़ा योगदान रहा है. 16 साल की उम्र में तलत ने आकाशवाणी लखनऊ के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड करवाया था, जो सुनने वालों ने काफी किया. और इसके बाद ही HMV, जो उस समय की सबसे मशहूर संगीत कंपनी थी, उसकी एक टीम लखनऊ आई और उन्होंने तलत से 3 गाने गवाए. इसके बाद उनकी किस्मत चमकी. शुरुआत में तपन कुमार के नाम से उन्होंने बांग्ला फिल्मों में गीत गाए और हिंदी फिल्मों में जिस गीत से उनकी पहचान बननी शुरू हुई वो था 1950 में फिल्म आरजू में उनकी गाई गजल, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो. अपने 4 दशक से अधिक लंबे करियर में मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार और मन्ना डे जैसे दिग्गजों के बीच उन्होंने अपनी मखमली आवाज से एक अलग पहचान बनाई. 1992 में उन्होंने पद्म भूषण से नवाजा गया और 1998 में 9 मई को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. आइए सुनते हैं उनका ये बेहद खूबसूरत गीत.
तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए.
Well, today we are also remembering Nicholas Christian Hopkins, also known as Nicky Hopkins, pianist and organist. He performed on many popular and enduring British and American rock music recordings and also recorded songs by the Beatles, the Rolling Stones, the Who. And for you listeners, we have the song Mr. Big, the piano performance, which...
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुदिता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर.
नमस्कार.